ठीक है, हम शुरू करते हैं।
नमो
अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो उपस्थायारं नमो लोय सप्तसाहुरं मंगलं भगवान् फिरो मंगलं गोचमोपनि मंगलं कुंदकुंदात्यो चैरधर्मसुमंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं तथानां सर्वधर्माणां शयनं जयतु शासनं शयनं जयतु शासनं शयनं जयतु शासनं तीनों को वरमें शास पीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रयोग समाधि के। हम लोग छठा ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमारी चर्चा नहीं हो पाई थी। अभी तक हम लोगों ने चर्चाएं करी है। हाँ,
रूप मद की लास्ट। हाँ, रूप मद की
पर हमने देखा था कि नामकरण के लिए तीन अलग अलग प्रकृतियों की बात करी थी। एक तो शुभ प्रकृति नामकरण की, दूसरी सुभग प्रकृति, राइट, और तीसरी
यश की।
इन तीनों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। तो शुभ और अशुभ, सुभग और दुभग, और यश कीर्ति और अयश कीर्ति पेयर के हिसाब से। इसमें से दो प्रकृतियां का जो पेयर है वो तो है चिद्रता की, जो की सुभग दुभग और यश कीर्ति और अयश कीर्ति। और जो शुभ और अशुभ प्रकृति है वो सिर्फ है दुर्गलता की, राइट। तो शरीर को सुंदर बनाने वाली तो अकेली शुभ प्रकृति और अशुभ प्रकृति है। So that is clearly not in our hands. हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, शरीर कैसे कैसे सुंदर होगा। अब हम बाहर से इसको सजाने का जितना भी प्रयास करेंगे उस तरह से हमको पसंद कर लेंगे या नहीं करेंगे, ये पसंद करना नहीं करना डिपार्टमेंट है सुबह और दुबह प्रकृति का। तो वो बाहर शरीर की शोभा से नहीं होता है। हम दूसरों को पसंद आए या नहीं आए, या हम ऐसा समझे कि दूसरों को पसंद आए कि नहीं आए, और आ भी जाए तो हमारा नाम अच्छा होगा या नहीं होगा, ये सब अलग अलग प्रकृतियां दिखती हैं। तो रूप का मध करना तो एकदम ही मतलब उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनता कि हम शरीर सुंदर है तो उससे अपने आप को रूप भाई बने। दूसरा, जब समय दृष्टि को बेध्यान हो गया है और उसको पता है कि मेरा तो चैतन्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य धन स्वयं ज्योति सुखधाम, तो जब उसको ऐसा रूप अपना सीख गया है तो फिर वह ये चीकर मुसाबित है मैं भी, ये सारी मनोखा घर इस गंदे से घिनौने शरीर को क्यों अपना अच्छा मानकर उसका घमन करेगा। किसी को रूप में उसमें कोई शंका है या फिर प्रश्न से? ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। और अभी तक हमने देख लिया है कुल का मत, जाति का मत, और ऐसे ही रूप का मत।
तो अनुभव जी, अनुभव जी, हाँ, सुभग सुभग और दुर्भग उसका थोड़ा सा बताएंगे ज्यादा?
ये जीव विपाकी कर्म प्रकृति है, मतलब सिंगल विपाक इसमें होता है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलने गया, ठीक है, और मिलकर मुझे लगा कि मुझे कोई पसंद ही नहीं करता है, राइट। जब मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है तो इसको बोलते, ये मेरा ये रियलाइजेशन होना, ये है दुखद नाम की नामकर्म प्रकृति का उदय, कि आपको लोग पसंद ना करें। आप बहुत सुंदर है, आप एकदम इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत रिच हो सकते हैं, एवरीथिंग यू हैव जिसको लोग पाना चाहते हैं, बट फिर भी जब आप लोगों के पास जाते हैं लोग आपको पसंद नहीं करते। तो ये क्यों होता है, ये दुर्लभ नाम की प्रकृति के उदय में होता है। और हो सकता है कि आपके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन जब आप लोगों के पीछे जाए तो आपको बहुत आदर और सम्मान, आपको सब पसंद करें, तो ये सुभग नाम की प्रकृति। और आपको सब पसंद भी करते हैं, पर यदि आपके यश नाम प्रकृति का उदय नहीं है तो फिर आपकी कीर्ति नहीं होगी, यू विल नॉट बी फेमस, सब लोग आपको जाने, आपको जो लोग जानते हैं वो बहुत पसंद करते हैं, वो आपका नाम नहीं हो पाता, तो वो यश कीर्ति नहीं होने के कारण, राइट। और यदि अयश का ही उदय है तो आपको भले ही सब पसंद करते हो लेकिन आपके ऊपर लोग आक्षेप लगेगा, आपके ऊपर ब्लेम करेंगे, झूठे आरोप लगेंगे, तो वो अयश कीर्ति के कारण, ठीक है।
हेलो, लास्ट टाइम थोड़ा बहुत बोले थे आप इसके बारे में।
हाँ, मगर पसंद लोग, देखो अभी मुझे क्या कंफ्यूजन होती है कि सुबह सब पसंद करते हैं, सब लोग पसंद करते हैं, फिर भी आपकी अगर अपयश कीर्ति है तो फिर ऐसे पसंद करते हैं मगर आपको क्या है कि बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा।
हाँ, जैसे कि सीता जी को सब पसंद करते हैं, एवरीबॉडी, राइट, लेकिन अभी उन पर लोकाभास का वो धोबी ने लगाया तो उनको अपनी परीक्षा देनी पड़ रही है, राइट।
हाँ,
तो तब तक उनके ऊपर कलंक लगाना तो वो अयश कीर्ति का होता है, सबको पसंद की वो शीलता है। ऐसी द्रौपदी को सब पसंद करते हैं बट अब लोक में चल गया, कह रही तो पांच चांदी है, इसके तो पांच पति है, अब ऐसा है नहीं कुछ भी, तो वो अयश कीर्ति के कारण।
आपने बताया
गुरुदेव श्री को सब पसंद करते हैं, सब उनके नाम है, लेकिन अभी किसी को बुरा बोलना है उनके सामने काले चेहरे दिखाने हैं या कुछ बुरा बोलना है उनके चरित्र के बारे में कुछ भी, कितनी सारी किताबें निकली, कितने गंदे गंदे पत्र आते थे, अयश, ठीक है। लेकिन अब इतना समझने वाली बात यह कि वो काले झंडे देखकर, काला पत्र वैसे गंदे शब्द सुनकर उनको अपनी कीर्ति छाती हुई नहीं दिखती, किसी को सम्यक दृष्टि है, राइट, तो उनको बुरा नहीं लगता उससे, इस कारण उनके अयश प्रकृति का उदय भी नहीं कहा जाता, इससे सम्यक दृष्टि के अयश प्रकृति का उदय नहीं होता, क्योंकि ठीक की प्रकृति है, ठीक को बुरा फील हो कि मेरा नाम खराब हुआ तो अपयश का उदय है, उसको यदि फील नहीं होता तो क्या करोगे, तो ये सम्यक दृष्टि के, इसलिए कभी यश खराब नहीं होता, तुम्हारी प्रकृति नहीं आती, क्यों, क्योंकि उसको कभी कोई निंदा दे या कोई उसकी स्तुति करे, वो सामने भाव को लेकर चलता है और वह उसको कोई अभिमान तो है नहीं, तो कोई यदि उसकी बुराई भी करे तो उसको उससे फर्क नहीं पड़ता।
बराबर बराबर, आपने बोला था
अभी 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 आएगा इसका कि सम्यक दृष्टि में कौन कौन सी कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं होता, तो अपन उसको देखेंगे। अभी अगला मध है मध, जो मध में रूप को, मध न ज्ञान को, ज्ञान का मध। अब ज्ञान के मध के बारे में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। ज्ञान किसको बोलेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर, यदि जिस ज्ञान से मध हो रहा है, जिस ज्ञान का मध हो रहा है, वो ज्ञान पक्का, लाइक डेफिनेटली दैट ज्ञान इज नॉट द ज्ञान, वो वाला ज्ञान वह नहीं है जो हमको सुख उत्पन्न करेगा। उस ज्ञान को हमारे अध्यात्म की भाषा में जड़ बोलते हैं, ठीक है। जो ज्ञान आत्मा के काम नहीं आए वह ज्ञान जड़ है, वह ज्ञान ही नहीं है, बराबर। और ज्ञान का मन होता है लोक में, वो ज्ञान हमेशा यही होता है कि मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, आई एम अ वेरी फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे सारी इकोनॉमिक्स के बारे में सब पता है, मुझे मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी का, बड़ी यूनिवर्सिटी में आई एम अ प्रोफेसर इन, आई एम अंडर गोइंग, मेरे अंडर में इतने सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मुझे बड़े बड़े सेमिनार्स पर बुलाया जाता है, आई हैव बीन अवार्डेड सो मेनी प्रेस्टीजियस डिग्रीज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो ये जो ज्ञान का मध है, ये हमेशा किस चीज का होगा, ये उस चीज का जो कि आपने संग्रहित करके रखी है। इसको हम आचार्यों की भाषा में समझे तो इसको बोलते हैं ज्ञान का परिग्रह, ठीक ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान का परिग्रह। गुरुदेव श्री के बहन श्री की रक्षामृत पर प्रवचन है तो उसमें 70 नंबर का प्रवचन है, उसके अराउंड 40 मिनट के बाद गुरुदेव श्री श्रीमद राजचंद जी का और रामजी भाई जी का, रामजी भाई जी बहुत बड़े एडवोकेट थे राइट, उन सब का बहुत डिस्कशन करते हैं और फिर ध्रुव नाटक का भी बताते हैं और बताते हैं कि हमने भी बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं, हमने भी बहुत सारे नाटक देखे हैं, बहुत सुंदर उन्होंने बात चर्चा करी। तो तब शायद जब उन्होंने मूवी देखी थी बड़े पर्दे पर मुंबई में, तब आवाज मेरी मूवी नहीं आती थी तो मैं आवाज की आती थी राइट, तो उससे वो बहुत सारा अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। तो उसमें वो रामजी भाई जब उनका डिस्कशन करते हैं तो बोलते हैं उनको इतना बड़ा वकील है, इतना जानते हैं सब लोग, एक एक घंटे के 500-500 रुपए फीस इनको देने आते हैं, और जब ये वकील नहीं बने थे तब से ऐसे इनकी पहुंच है बराबर। तो फिर गुरुदेवश्री बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है ये ज्ञान धूल का ज्ञान है, ये ज्ञान आनंद की कणिका को उत्पन्न नहीं कर सकता, इस ज्ञान का कुछ काम नहीं, ज्ञान स्वरूप को जानने के काम में नहीं आता बराबर। क्योंकि बहन श्री का जिस बोल पर प्रवचन है वो बोल ही है कि मैंने अनादि से सब पर को बहुत जाना, पर को बहुत भोग और विशेषों को जानने में इतना कंडील हुआ कि सामान्य को जानने की खबर ही नहीं रही। वी आर सो बिजी इन सर्चिंग फॉर दी स्पेसिफिक, हमको विशेष चीजों को जानने की इतनी ज्यादा जल्दी है, इतनी ज्यादा उतावली है कि हम जो सामान्य चीज है, कॉमन चीज है, हम उसको नहीं जान पाते। यदि आपको एक रूम में ले जाया जाए और आपसे बोला जाए कि चलो इस रूम में क्या क्या दिख रहा है बताओ, तो एवरीबडी विल सर्च फॉर एवरीथिंग, अरे यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, यहाँ चेयर है या लैपटॉप है या ग्लासेस है या वॉच है राइट, हर कोई स्पेसिफिक क्या क्या दिख रहा है, बट नो बडी विल से यहाँ दीवार दिख रही है, यहाँ पर तो लाइट दिख रही है, आई कैन एक्चुअली ब्रीद इन साइड, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए राइट। सो ये हम स्पेसिफिक चीजों के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि हम जो कॉमन बेसिक एकदम ऑब्वियस चीजें हैं हम उसको ही इग्नोर कर देते हैं। तो उसमें गुरुदेवश्री बोलते कि देखो हमने सारी कलाओं के लिए अपना जीवन लगा दिया, स्कूल गए, कॉलेज गए, पूरा जीवन पढ़ाई में कैसे धंधे को बढ़ाना, कैसे करना, कि पूरे दुनिया में एक शादी कैसे होती है, शादी में कौन से गीत कब गते हैं, कौन सी रस्म क्या है, कोई मर जाएगा तो क्या करेंगे, कोई जन्मोत्सव होता है तो क्या करते हैं, एवरी प्रोसीजर भी नो कैसे क्या किया जाता है। तो ये सारी चीजों की हमारे पास पूरी जानकारी है लेकिन ये ज्ञान किस काम का, तो ज्ञान का उसी ज्ञान का मधु होता है जो ज्ञान बेकार का होता है, जो ज्ञान काम का होता है वह आनंद के साथ प्रकट होता है, नहीं ज्ञानानंद स्वभावी। तो जो आत्मिक ज्ञान है वो तो आनंद के साथ उसकी जोड़ी है, वो यदि ज्ञान होगा तो आनंद के बिना नहीं होगा, हम दोनों की बेस्ट फ्रेंडशिप है। लेकिन बाकी का जो कुछ भी ज्ञान है वो आनंद को देने के लिए बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं, और साथ में मानो एक एक परिग्रह का बोझ है जो ज्ञान हमारे आत्मिक कल्याण के लिए कुछ कार्यकारी नहीं होता। उस ज्ञान का जो मद करता है इससे सिद्ध होता है कि उसने ज्ञान स्वरूप आत्मा को तो बिल्कुल नहीं जाना, एक दो डिक्शनरी पढ़कर, चार पांच किताबें पढ़कर यदि हमको मद हो जाएगा तो हमें ये कहाँ पता है कि हमारा ज्ञान की सामर्थ्य तो तीन लोग को एक काम एक समय में पूरा जानने की सामर्थ्य है, कैसे पता पड़ेगा हमको। तो केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा जड़ ऐसा भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न ज्ञान में, ये टूटे फूटे हमारे इंद्रियों की खिड़कियों से निकल के आने वाले ज्ञान में यदि घमंड करेगा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, तो उसको केवल ज्ञान स्वभाव की खबर कहाँ है, उसको क्या पता कि जो अनंत केवली हुए वो कैसे केवल ज्ञान में क्या क्या जानते हैं, उसको क्या पता कि शुद्ध केवली जो होते हैं उनका ज्ञान वालिशांग का कितना विषय होता है, उसको क्या पता कि एक अंग के एक अंश के ज्ञानधारी भी कितने बड़े ज्ञानवान होते हैं, उसको नहीं पता कि अवधि ज्ञान क्या होता है, मन पर्याय ज्ञान क्या होता है, ये सब रिद्धियां हैं जिसको बस थोड़े से विषय को जानकर ज्ञान हो जाता है, उससे बिल्कुल पता पड़ता है कि वह ज्ञान स्वभावी आत्मा से अपरिचित है। जो सम्यक दृष्टि को ज्ञान का मद नहीं होता और जिसको ज्ञान का मद होता है उसको सम्यक दृष्टि नहीं होता।
तो अनुभव जी जो ये तो के जो बाहरी ज्ञान होता है, अभी जो वो बुक नॉलेज हम कहेंगे, चालू बुक नॉलेज, वो तो परिग्रह बोला, परंतु जो शास्त्र का ज्ञान होता है आत्मा के ज्ञान बगैर का, जो द्रव्यलिंगी मुनि का, तो वो उसको भी परिग्रह बोलेंगे?
हाँ हाँ, वो भी परिग्रह है।
वो भी परिग्रह
है ना, जब
क्षम ज्ञान जो बोलते हैं हम, वो सारा परिग्रह
ज्ञान। जब तक आत्मा के लिए कार्यकारी नहीं है तब तक वो सिर्फ सिर का एक बोझ है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ कि इट्स लाइक जितना कि यदि मैंने बहुत पढ़ाई करी सब कुछ समझ लिया, मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं सब बता दूंगा, मैं सबको हेल्प करता हूँ, बट वेन यू कम टू माई हाउस यू सी यार इसके पास तो कुछ भी नहीं है तो कैसे गरीबी में रह रहा है, तो भाई तुम्हारा इतना सारा जानना किस काम का है, व्हाई डिड यू मेक लिविंग फॉर योर सेल्फ। तो ऐसे ही बहुत कुछ जानता है लेकिन जब आप उससे पूछो तो वो बेचारा दुख में है, उसको आनंद की कणिका का नहीं पता है, वो वही राग द्वेष मोह के आकुलता के कल क्या होगा, सात भयों से घिरा हुआ मृत्यु के डर से हमेशा बैठा रहता है, कल ये नहीं हो जाए वो नहीं हो जाए, तो उसका जानना किस काम आ रहा है। करे तो किसी का भी, चाहे वह द्रव्यलिंगी मुनिराज का ज्ञान हो आगम का, बिल्कुल चाहे सात तत्व का ज्ञान, चाहे वह हमारा हो और आपका हो, राइट। देखो हम सबको पता है कि संसार अनित्य है, बराबर, हम सबको पता है कि हम अकेले हैं, हम सबको पता है कि परिवार वाले अन्य हैं, ये हमारे साथ जाएंगे नहीं। अब कोई ऐसा हमारा प्रसंग बना और यदि हमको बारह भावनाएं याद नहीं आएंगी, यदि हमको खुद ही एक संबोधन नहीं करेंगे, हम अपना स्थिरीकरण नहीं कर पाएंगे, तो हमारा बारह भावनाओं को याद करना किस काम का, दूसरों को सुनाने के लिए कि सिर्फ दूसरों के जब दुख के प्रसंग हो तो उनको समझा देना एक बार नहीं दिया तब अनेकते हैं, और जब हमारे पास आए तब हम क्या करें, तो हमारे लिए तो कुछ काम नहीं आ रही ना बारह भावनाएं। मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सबको समझा दूं और जब मेरे ऊपर वैसे प्रसंग बने जब मैं खुद ही फिर ना करूं तो मेरा समझाना कि मैं तो मूर्ख हो गया ना, क्या मेरे पास पानी का टैंक लगा हुआ है, वो क्या कि मेरे घर में सब प्यासे हैं, मैं कुछ प्यासा हूँ लेकिन मैं पूरे नगर को पानी पिला रहा हूँ, तो ये तो बेवकूफी हुई ना। तो अपना ज्ञान जो स्वयं के आनंद को बनाने के लिए काम आए वो ज्ञान अपने चैतन्य का ज्ञान, वो ज्ञान कार्यकारी, और उस ज्ञान को जिसको उस ज्ञान की खबर है उसको मद नहीं होता, उसको घमंड नहीं होता, लेकिन जिसका ज्ञान उसके काम नहीं आता उसको, जिसको ज्ञान की, केवल ज्ञान की पांच प्रकार के ज्ञान होते हैं, श्रुत ज्ञान की अधिकतम सामर्थ्य कितनी है, मतलब श्रुत ज्ञान अधिकतम संख्या के विषय को जानता है जो द्वादिशा में, अब अधिकतम संख्या क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन पे जाएंगे तो हमारा दिमाग घूम जाएगा कि श्रुत ज्ञान कितना सारा जानता है, तभी तो श्रुत केवली और श्रुत ज्ञानी को तो तबला में केवल ज्ञानी से बड़ा श्रुत ज्ञानी कहा, क्योंकि उपकारी श्रुत ज्ञान ज्यादा है कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा के केवल ज्ञान तक पहुंचाता है, तो श्रुत ज्ञान की खबर कहाँ है जिसको अपने ज्ञान का मत है। हम इतना जानते हैं, दो घंटे हमने एक महीने पढ़ाई की और फिर एग्जाम भी हम गोल्ड मेडल ले आए, जिस दिन हमारी कन्वोकेशन सेरेमनी है उस दिन यदि जो मैंने एक महीने में पढ़ा इतनी मेहनत करके कोई मुझसे पूछे शायद मैं नहीं बता पाऊँ, याद ही नहीं रहता। हम क्या जानते हैं हमारे ज्ञान सामर्थ्य क्या है, राइट। बचपन में जाना हुआ जवानी में भूल जाते हैं, जवानी में पढ़ा हुआ थोड़े बड़े होते तो भूल जाते हैं, और फिर वृद्धावस्था में तो कुछ स्मृति ही नहीं रहती, जीवन में पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो ये ज्ञान जो इतना क्षणिक, इतना टूटा फूटा और हमारे कुछ काम नहीं आने वाला, हम इसका क्या घमंड करें। अब इसके ऊपर कि जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का गमन होता है, इसके साथ दूसरी चीज नाटक के पर्दे पर आती है और उसका नाम है रौद्र ध्यान। तो क्या हो जाता है, यदि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं अच्छी चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को उलझा सकता हूँ, तो मुझे लोग बोलेंगे चतुरी वेरी क्लेवर, राइट? एंड यू नो क्लेवर इज अ बैड वर्ड नाउ। क्लेवर मतलब हाउ इजीली ही कैन मेक अदर्स अ फूल, राइट? तो इसको बोलते हैं हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी। जो लोग ज्यादा ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं वो लोग अपना चतुराई से दूसरों का फायदा उठाने लगते हैं। सीधी सी बात, somehow, सारे डॉक्टर सेम है बट एक डॉक्टर का ज्यादा नाम हो गया, उसकी चीज जस्ट दुगनी हो जाएगी। यदि कोई बहुत अच्छा वकील है जिसको अच्छे से बोल जाता है, लड़ना आता है, राइट, तो उसकी फीस शायद एक नॉर्मल फैमिली का आदमी पे एफोर्ड ही ना कर पाए। हेलो, जबकि पुराने जमाने में जो बड़े बड़े वैद्य होते थे, राइट, पुराने जमाने में ये सब ऐसी चीजें जब लोगों के परिणाम भद्र होते थे, सरल परिणाम होते थे, तब ये नहीं होता था। कोई यदि बहुत अच्छा होता था, यदि कोई बहुत बड़ा वैद्य होता था अच्छा, तो उससे मिलना उतना ज्यादा सरल होता था। क्यों? क्योंकि वो लोग को मतलब, क्योंकि जितना पेड़ बड़ा होता जाता है वो उतना झुकता है। विद्या ददाति विनयम्, विद्या से विनय आती है। यदि हमारी पढ़ाई से हमको विनय नहीं आ रही है, हम नहीं चाहते कि दूसरे भी इसको जाने, दूसरे भी इसको समझें, मतलब ये विज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का सिर्फ एक दिखावा है, आडंबर है, और ये महल इतनी जल्दी टूट कर गिरने वाला है जिससे हमको आशा भी नहीं। और ज्ञानवर्णी कर्म के बंध में किसी को लिया है जिसको मात्सर्य होता है, दूसरों के बढ़ते ज्ञान से ईर्ष्या और अपने बढ़ते हुए ज्ञान का मद, उसको ज्ञानवर्णी कर्म का तीव्र आश्रम होता है, राइट? तो वो लगता है कि मुझे बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन द मोमेंट मुझे घमंड होने लगे कि मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मुझे ज्ञानवर्णी कर्म का आश्रम होने लगेगा, राइट? तो ज्ञान का मत एक तो हमारे आनंद में कुछ काम नहीं देता, वो जिस ज्ञान का है वो ज्ञान जड़ का है, चैतन्य का नहीं, तो वो ज्ञान कुछ काम का नहीं है। और यदि उसका मद हमको हो रहा है, मतलब हमको ना पांच ज्ञानों की खबर है, ना केवल ज्ञान स्वभाव की खबर है, ना ही ये पता है कि हमारा ज्ञान कितना छोटा, कितना छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न है, ठीक है? तो ज्ञान का मन सम्यक दृष्टि के स्वभाव तक नहीं होता, वो जानता है कि भाई तो ज्ञान और आनंद का ही पिंड है, जिसका मैं बना हूँ उसका घमंड क्या करता, उसके ही तो सब बने हैं। यदि मेरे से ज्यादा ज्ञान होता, आपके भी कम होता, तो मैं घमंड कर लेता, मैं भी चैतन्य केवल ज्ञान स्वभावी, आप भी चैतन्य केवल ज्ञान स्वभावी, तो जब सब सभी चीज सिद्धों के समान केवल ज्ञान स्वभावी है, तो कौन बड़ा कौन छोटा इसका मत करे, ठीक है? तो ज्ञान का मद जो इस संसार में बहुत प्रचलित है, इससे जो मुमुक्षु है वह बहुत दूर रहता है। वो तो चार ज्ञान का धारी गड़धड़ हो तो भी भगवान के समव शरण में, मतलब गड़धड़ मतलब आप समझते गड़धड़ कौन है, आचार्यों के आचार्य गणपति, सबसे बड़े आचार्य, चार ज्ञान के धारी और अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना कर देने वाले, मतलब भगवान के समक्ष में सब लोग बैठे हुए हैं, 12 सभाएं लगी हुई है, राइट? आप और हम भी गए, करेक्ट? तो हम भगवान के समक्ष पे गए, मैं भी पूछूंगा भगवान मैं अगले भाव में कहाँ जाने वाला हूँ, मैं पिछले भाव में कहाँ था, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरा रोग कब ठीक होगा। आप भी शायद कुछ ऐसे पूछोगे कि यार हमें ये बहुत परेशान करते हैं, इनका क्या बिगाड़ा है, मतलब हमारी जो जो शंकाएं होंगी हम उसके हिसाब से पूछेंगे। तो समव शरीर में 12 सभाओं में कितने सारे लोग और सबके अपने अपने अलग अलग क्वेश्चन, करेक्ट? हेलो,
करेक्ट?
केवल यानी के ज्ञान में जब आप अपने अपने क्वेश्चन बोलते रहोगे तो एक व्यवस्थित वस्तु स्वरूप कौन, मतलब वो तो ओंकार में ध्वनि है,
ऐसा तो नहीं कि आप पहले क्वेश्चन करोगे, आपके पास माइक रहेगा फिर भगवान जवाब देंगे, ऐसा तो कुछ बात है नहीं। ओंकार में थोड़ी खिंचती है, आपके मन में जो शंकाएं होती है आपको स्वयं उसका समाधान मिल जाता है। जब सब अपनी अपनी शंकाओं को लेकर वहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कोई तो ऐसा वहां पर होना चाहिए जो अपना ना सोच के सबका सोचकर एक द्वादशान को निबद्ध कर रहा हो, एक सिस्टमेटिक। भगवान अच्छा आप बताइए, लोक का क्या स्वरूप है, धर्म का क्या स्वरूप है, जीव का क्या स्वरूप है, द्रव्यों का क्या स्वरूप है, वहां पर बैठकर पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं कि क्या जो जिसको कि भगवान तो भी थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर है, इसके बाद इन जीवों की शंकाओं का समाधान कैसे होगा। तो ये सब तो अपने स्वार्थ के, अपने अल्प ज्ञान के प्रेरित हैं। तो ये सब तो अपनी अपनी क्षेत्र, अपनी अपनी परेशानी के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं, पर ये लोग नहीं जानते कि भगवान अभी योग निरोध करेंगे और चले जाएंगे, फिर इनकी शंकाएं जो और उत्पन्न होंगी। अभी मैंने पूछ लिया कि प्रभाव में कैसा और आगे क्या होगा, अब मुझे पता पड़ा नहीं नहीं मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, मैं अभी नहीं पूछने गया था, भगवान का समक्ष ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा। तो गणधर वे महापुरुष होते हैं जो अपनी शंकाओं का नहीं, वो तो दिव्य ध्वनि को ऐसा, जैसे ओंकार में दिव्य ध्वनि आई और उन्होंने मानो लोग के अभिमाषी कल्याण के लिए कि भगवान की दिव्य ध्वनि को फ्रीज कैसे कर दिया जाए, हाउ कैन आई कंटेन इट इन वर्ड, तो वो उस पूरी दिव्य ध्वनि को सुनकर अंतर्मुहूर्त में द्वादशान की रचना कर देते हैं। नाउ इवन नाउ इफ शंकरा चले जाते हैं, वो चले भी जाते हैं, तो भी इन लोगों की नाव अब यदि इनको कल किसी को अपने झंडे से अपने परिवार से फुर्सत मिले और उसको याद आए कि मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, यदि उसको शंका कल तो हो और वो यदि हमारे पास आए तो हम उसको बता पाएंगे कि देखो शंकर देव ने अपनी दिव्य ध्वनि में ये फरमाया है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण किस मार्ग से होगा। वो सामर्थ्य आप समझ रहे, मतलब जिस ध्वनि को सुनकर प्रेम अपनी भाषा में, देव अपनी भाषा में, मनुष्य अपनी भाषा में अपने अपने उत्तरों को पाते हैं, उसमें कोई विलक्षण ज्ञान की ध्वनि गणधर एक विशिष्ट उस पूरी दिव्य ध्वनि का ऑपरेशन करके उसको 12 अंगों में गूंथ देते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि भगवान द्वादशांग रूप उपदेश देते हैं, गणधर देव उसको सूचीबद्ध, जैसे किसी बुक की इंडेक्स होती है उसमें एकदम सिस्टमेटिकली चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, ऐसे गणधर देव सिस्टमेटिकली उस पूरी दिव्य ध्वनि को वहां पर पूरा का पूरा एनालाइज करके, बात करके, वर्गीकरण करके द्वादशांग की माला को बूझते हैं। तो उनका ज्ञान कुछ अद्भुत है। सौधर्म इंद्र ठीक है, उसको द्वादशांग का ज्ञान होता है, लेकिन सौधर्म इंद्र के चार ज्ञान नहीं है। वो समोह शरण में तीर्थंकर भगवान के बाद सबसे अधिक कोई ज्ञानी है, मतलब तीर्थंकर भगवान और जो सामान्य केवली वहां पर होंगे उन सब केवली को छोड़कर जो सबसे अधिक ज्ञानी वहां पर है वो गणधर देव चार ज्ञान के धारी है। वे भगवान की सभा में कैसे एकदम दास होकर भगवान को टकटकी लगाकर देखकर उनकी दिव्य ध्वनि हर समय सुनते हैं। अरे पहले अंतर्मुहूर्त पर उन्हें द्वादशान की माला गूंथ ली ना, तो दूसरे अंतर्मुहूर्त से उनको क्या काम, नया द्वादशान थोड़ी निकल कर आएगा, तो बार बार दिव्य ध्वनि क्यों सुनेंगे वो। उनकी अनंत विनय, उनकी केवल ज्ञान के प्रति अनंत विनय, उनकी भगवान के भगवत स्वरूप के प्रति अनंत विनय, वो भगवान को देखते हैं, उनको अपने आत्मा ऐसा दिखता है कि अरे देखो ये मेरी पर्याय है, अभी अभी यही मैं बनने वाला हूँ, मैं भी ऐसे ही रहूंगा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाला ये स्वरूप है। सुनने के लिए कर्ण इंद्रिय को इस ध्वनि को सुनने मिली है, ऐसा ऐसी लघुता उन गणधर देव को होती है। उनको ज्ञान का मद नहीं होता, उनको यदि कोई फंस कर जाए, उनको कोई चिल्लाए, उनको कोई गाली देकर जाए, समम शरण में तो अवसर नहीं होते, बाहर यदि कोई गणधर परमात्मा आचार्य परमात्मा है, कोई बहु शुद्ध केवली है, यदि उनको कुछ उनका उपहास उड़ा दी जाए, अरे ये तो मौन है, ये तो बैल है, इनको तो कुछ नहीं आता, तो वे मुनिराज क्रोध नहीं करते, इतने बड़े ज्ञानी उनको देख कर उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे ज्ञान का उपहास बढ़ाया। भगवान बहुत मतलब उनका स्वरूप कुछ अलग ही है, तो जो सब कुछ जानते हैं उनको लगता है कि हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि केवल ज्ञान क्या जानता है उनको उसकी सामर्थ्य पता है, और जो कुछ हाँ। नहीं जानते तो थोड़ा सा जानते भी उनको लगने लगता है कि अरे मैंने इतना जान लिया, मेरे पास ये मेडिकल ये डिग्री है, ये मेरा ऑफिस ऐसा है, यहाँ पर इतनी पहुंच है, तो उनका ज्ञान उनके ज्ञान को ही काटने के काम आता है, उससे उनकी ज्ञानावरणी धर्म का तीव्र आश्रय होता है। ठीक
हाँ।
है तो इसके लिए धार्मिक दृष्टि को ज्ञान का मद नहीं होता, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव का ही मद करना पड़े तो वो तो पागलपन है। राइट, यदि सभी के पास सबके ही पास इस नगर में एवरीबडी हैज समथिंग कॉमन, फिर मैं बोलूँ अरे मेरे पास ये है, तुम क्यों बोल रहे हो, सबके पास है वो,
सबके पास
ज्ञान स्वभाव है, तो उसका मद क्या, ज्ञान स्वभाव में तो डूबना होता है, ज्ञान स्वभाव में से तो आनंद निकालना होता है, उससे मद कैसे निकाले। तो जिनको ज्ञान का मद होता है प्राय रौद्र ध्यान में अपने ज्ञान को तो लूटते ही है, नरकादि गतियों का बंद करते हैं, हिंसानंदी मृषानंदी ऐसे दूसरों की पीड़ा का अपनी मजबूरी का फायदा उठाकर ऐसा करते हैं, बड़ी बड़ी फीस, यदि बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स को जानने वाले हैं, फाइनेंसिस को जानने वाले हैं, अकाउंटेंट्स हैं, तो टैक्स को चोरी भी करवाएंगे आपकी और आपको बेनिफिट भी देंगे और अच्छा खासा परसेंटेज भी आपसे लेंगे। राइट, तो दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू इन स्टीलिंग, और आपको एक चोरी की पार्टी बना रहे हैं, खुद एक बन रहे हैं, तो उनका ज्ञान उनके ही हाथ में काम आ रहा है। अभी का बड़ा बड़ा ज्ञान मिसाइल बनाने के काम आ रहा है, हाउ टू क्रिएट मोर बेटर वेपन्स, हम और कैसे ज्यादा शक्तिशाली बंदूकें बना पाए, हम और कैसे नई नई चीजें नई नई चीजों को इजाद कर पाए, इतनी सारी सारा पूरा नॉलेज बायो बायो साइंस का, तो पूरा का पूरा नॉलेज सारे एक्सपेरिमेंट्स में हम दो लोगों को मिलाकर एक नया तीसरा प्राणी बना सकते, जीव बना सकते, लेबोरेटरीज भरी पड़ी है जानवरों से, एंड फिर ह्यूमन बींग्स पर भी फिर मेडिसिन को इंजेक्शन को टेस्ट करते हैं जब वो जानवरों पर दूर हो जाए। करेक्ट, तो वो बेचारे मजबूर हैं तो वो पैसों के लिए करते हैं, वी ऑल्सो नो कि अभी इसमें देखो रिस्क तो है, तो पहले प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे, कुछ हो जाए तो वी डू नॉट गारंटी इट। तो अपने ज्ञान को अपने रिसर्च को वो इस पूरे पैनिक को ये पूरी प्रकृति को एक सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करने में लगा रहे हैं, वो कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान का हो गया, अब अगला है
अनुभव जी मुझे ये गंधर्व के बारे में क्वेश्चन है कि भगवान की सभा में तो कई गंधर्व होते हैं, एक को मुख्य गंधर्व बोलते हैं, तो दूसरे गंधर्वों में और मुख्य गंधर्व में कुछ फेर तो होता ही होगा ना, तो एक को मुख्य बोलते हैं और दूसरे गंधर्व तो सब गंधर्व की ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो अंतर मुहूर्त में रचना कर सकते
हैं। सेम है, सबकी सभी चार ज्ञान के धारे हैं। देखिए क्या है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रॉपर सिस्टमेटिक। जैसे कि हमारे सौधर्म स्वर्ग है तो उसमें के लिए सौधर्म इंद्र नहीं होता, सारे देव होते हैं, बट सौधर्म उनका प्रधान है, बराबर। समक्ष लिंग है, मुनिराज का पूरा संघ है, और अकेले गर्धर आचार्य नहीं होते, और भी बाकी के आचार्य भी है जो गर्धर नहीं है, चार ज्ञान के धारी नहीं है, उपाध्याय भी है, साधु भी है, करेक्ट। तो यहाँ पर एक से चार ज्ञान के धारे गर्धर हैं, फिर भी उनमें एक प्रेसिडेंट चुना जाता है, राइट। जैसे कि हमारे पास तीन मिनिस्टर्स को दिन की कमेटी बनाएंगे तो कमेटी का प्रेसिडेंट होगा, आपके तीन ट्रस्टीज है, कोई कम ज्यादा नहीं है, बस एक हम एक रोटेशनल बेसिस पर एक प्रेसिडेंट बना देते हैं, सेक्रेटरी बना देते हैं, ऐसा नहीं जो प्रेसिडेंट है वो बहुत सीनियर ट्रस्टी है और सेक्रेटरी है वो जूनियर है, सब लोग सेम ट्रस्टी है, दे ऑल मेड द ट्रस्ट। फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दिस ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसको देने के लिए ऐसे गर्धर सारे होते हैं, उनमें एक मुख्य गर्धर होती है, क्योंकि ही इज द लीड, ही इज द चार्ज, जो ग्वेन पत्नी है राइट, तो ही इज द मुख्य सिस्टर और उनके साथ बाकी के गर्जर है, तो वो सारी अपनी क्योंकि एक दो निराश तो है नहीं, वहाँ पूरी सभा लगी हुई है, इतनी बड़ी सभा लगी हुई है, तो जो द्वारिशान ही रचना सब करेंगे तो फिर उसका कम्युनिकेशन भी तो होगा, उसका डिस्पर्शन भी तो होगा कि आगे हम और उसको कैसे स्प्रेड करेंगे, तो सब बहुत सारे गर्जर लोग बाकी आचार्यों को बाकी उपाध्यायों को साधुओं को पढ़ाते हैं बराबर, तो केवली से जिस हम सुनते हैं उसको सर एक घूमते हैं बराबर, और फिर मुख्य ग्रंथ देश की आज्ञा से उस इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन पीछे जाना होता है, और फिर ऐसे एक काल में बहुत सारे शक्ति भी होते हैं, ग्रंथर होते हैं, सब सब तो ज्ञान की महिमा है, बाकी वो जस्ट एक स्ट्रक्चर है कि इसको मुख्य बना दिया गया, तो ये इज द हेड, बाकी सब चार ज्ञान के धारी हैं और सभी अंतर्मूर्त में वादिशांग को भूतने की एबिलिटी रखते हैं।
थैंक यू।
और कोई बात इलेक्शन नहीं होता कि हम इनको हेड बनाएंगे, इनको ही बनाएंगे, जब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो ऑलरेडी वहाँ गर्धर थे, मुख्य गर्धर का अभाव था, तो जो बड़ी चोर कौन होगा मुख्य गर्धर, जितने थे हम उनमें से इलेक्शन करवा लेते ना, तो देयर इज नथिंग लाइक इलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ मुख्य गर्धर, योग्यता होती है सबकी, वो सब क्रमबद्ध में है, तो जो मुख्य हो उनकी योग्यता है, जिनकी प्रेजेंस पर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी, तो वो मुख्य गर्धर वहाँ पर आए इंद्रभूति गौतम, और फिर भगवान की दिव्य ध्वनि शुरू हुई, तो इनका कोई अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है, गर्धर तो भगवान केवल ज्ञान लेंगे, समक्षरण की रचना होगी, सीमा के लिए मुनिराज को चार ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और वे चार ज्ञान के धारक मुनिराज गर्धर पद को पाएंगे, सब क्रमबद्ध है, मतलब क्या हुआ कि किसी मुनिराज को चार ज्ञान ही नहीं हो और समक्षरण लग जाए, कि नहीं ये तो क्रमबद्ध है, जहाँ भगवान का केवल ज्ञान होना क्रमबद्ध में है, वही उनके समक्षरण का लगना क्रमबद्ध में है, और वही किसी ना किसी मुनिराज को चार ज्ञान की उत्पत्ति होना क्रमबद्ध में है, और जब चार ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो वो समक्षरण में होगा, और वो होगा तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी, ये सब कुछ बंधा हुआ है, भगवान केवल ज्ञान में से किसी मुनिराज को मनाए पर ज्ञान नहीं देते राइट, एकदम इंडिपेंडेंट है, बट उस टाइम पर एक साथ हो रहा है, मतलब ये एक वंडर है कैसे हो जाता है सब कुछ, हम सोचते हैं बट दैट्स हाउ इट हैपेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है धन बल को मद भाने, एक तो धन और एक बल, ठीक है, हम पहले बल की बात कर लें, बल यानी कि शरीर में ताकत, ठीक है, जैसे रूप को बनाने वाले नाम कर्म थे, पितृ और मातृ का जो जाति था उसका भी हमने गोत्र कर्म से थोड़ा बहुत देखा था, गोत्र कर्म के कारण गर्भ प्राप्ति जो होती है, ज्ञान ज्ञानवर्णी कर्म के थोड़े से अभी क्षयोक्षम बढ़ने के ज्ञानवर्णी कर्म का थोड़ा सा क्षयोक्षम ऐसे हुआ तो दिखने लगता है ज्ञान पर, बाकी सब चला जाएगा, एक इंद्री का चला जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा, तो ज्ञान का तो ज्ञानवर्णी कर्म है। अब है बल मद, इसके पहले धन मद है, हम उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहे हैं। बल क्या हमारे नाम कर्म में ही सहनन करके नाम कर्म होता है बराबर, वज्र वृषभ नाराज सहनन, असंप्राप्त वाटिका सहनन बराबर, कुब्जक, ऐसे सारे अलग अलग छह प्रकार के सहनन होते हैं, ठीक है, और एक संस्थान होता है समचतुर्थ संस्थान, जीवक संस्थान बराबर, संस्थान में क्या होता है निर्बोध परिमंडल संस्थान, ये सारे संस्थान जो होते हैं इनका क्या काम है, संस्थान से आपकी बॉडी का शेप बनता है कि उसके हाथ पैर किस प्रपोर्शन में रहेंगे, तो किसी की बॉडी जैसे हमारे भगवान की प्रतिमा होती है एकदम इन ऑल डायमेंशन इट इज परफेक्ट, हर जगह से नाभि से हरि कर्ण की दूरी बराबर बनती है उनकी, तो इट्स लाइक सम चतुरस्र संस्थान, हर जगह से ही इज कंप्लीट एकदम प्रॉपर प्रोपोर्शन में, फिर किसी का शरीर जैसे होता है वो नीचे से मोटा होता है और ऊपर जाके पतला होता जाता है, किसी का शरीर ऊपर से फैला हुआ होता है नीचे जाके पतला होता जाता है राइट, ये अलग अलग स्वाति संस्थान निर्बोध परिमंडल संस्थान है बराबर, किसी का शरीर पूरा टेढ़ा मेढ़ा होता है कुंडक संस्थान में, उसका कोई आकार नहीं होता बराबर, किसी का शरीर एकदम छोटा होता है वामन का, जैसे कि वामन की कहानियां प्रसिद्ध है, एकदम छोटा हो जाना, तो आपने देखा होगा कुछ लोग एकदम ही छोटे होते हैं तो वामन हो जाते हैं वो। तो ये सब संस्थाने ये शरीर का आकार कैसा रहेगा वो बताते हैं। सर्वमन क्या करता है, शरीर के अंदर जो हड्डियां है और मांस मज्जा है, इन सब की ताकत क्या रहेगी। तो वज्र विषभ नारायण सिग्नल, उसमें हड्डियां भी बच चुकी, उसके अंदर जो नसें जा रही है वो भी बच चुकी, और उसमें जो वेष्टन हो नसों का ये सब भी बच चुका, मतलब एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग जो चरम शरीर जी होते हैं उनका वज्र विषभ नारायण सिग्नल होता है, ठीक है। और ऐसे करते करते आखिरी तक संस्थान जाते हैं, यहाँ पर आखिरी संस्थान में तो शरीर में हड्डियां ही नहीं होती, जैसे सांप होता है स्नेक, उसके शरीर में अकेली कोई हड्डी नहीं है, मतलब वैसी वाली राइट, इट्स ऑल फ्लेक्सिबल, पूरा का पूरा बुलबुला, तो ऐसे उनके शरीर के सहनन होते हैं। तो ये सब अपने अपने कर्म के उदय में उनको वैसी वैसी स्ट्रॉन्ग या वीक ऐसी बॉडी मिलती है। आपने कई स्टोरीज पढ़ी होंगी, किसी के पूरे बॉडी का हर एक पार्ट फ्रैक्चर हो चुका, अपने आप फ्रैक्चर होता है, उसका तो बहुत फेमस एक एथलीट है शायद, तो एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी हैज बीन फ्रैक्चर्ड, मतलब वो हर बार फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब कुछ भी हो थोड़े में ही फ्रैक्चर हो जाता है। एक रोग होता है जिसके कारण बॉडी में बहुत सारे फ्रैक्चर रिपीट होते रहते हैं, अलग अलग जो कुछ भी संस्थान है, यदि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत वीक है, तो ये सब उस सहनन के कारण होता है स्ट्रेंथ का। अब इस बीच यदि कोई अपनी बॉडी को बनाना चाहता है, जिम व्यायामशाला में जाते हैं, तो उस टाइम बॉडी शेप पर भी आती है और बॉडी में स्ट्रेंथ भी होती है, राइट, ठीक है। बच्चे हर किसी के नहीं होता, जिसकी होनी हो वो ही बेचारा जिम में जा पाता है, जिनकी मेंबरशिप तो बहुत सारे लोग केस लेते हैं, आई थिंक वी ऑल नो एवरीबॉडी मोस्टली हैज अ मेंबरशिप ऑफ अ जिम, बट टू कंटिन्यू जिम इज अ टास्क, एक दिन जाना दो दिन जाना, उसको कंटिन्यू रखना इट्स अ टास्क, करेक्ट। तो एक सिंपली सेट कि जिसको यदि करना भी है तो या तो वो बहुत आलसी हो जाता है, जिसका शरीर नहीं होना होता है तो वो बहुत आलसी हो जाता है, कंटिन्यू नहीं कर पाता है, या इंजरी हो जाती है थोड़े दिन जाकर ही, या कोई बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, या कुछ भी स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। तो ये जो कुछ भी यदि होना भी है स्ट्रेंथ का, तो इट विल टेक योर होल एक क्रमबद्धता को, ये होगा कि इसकी होनी है तो होगी, नहीं होनी है तो ये जाएगा भी, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, कितने दिन कंटिन्यू करेगा। तो आपके वैसे परिणाम होना, आपका वहां पर जाना, कंटिन्यू करना, दिस ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल, ठीक है, करेक्ट। और इसके बाद जब बॉडी सही में स्ट्रॉन्ग बन भी जाती है, तो उस स्ट्रेंथ का काम क्या रहता है, दैट इज समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। बॉडी बहुत शक्तिशाली हो गई, अब क्या करना है बताइए।
लौकिक में लौकिक वो तो के जो
अभी की जो 90% बॉडी बनाई जाती है, दैट बॉडी बिल्डिंग डज नॉट कम अंडर बल मद, दैट कम्स अंडर रूप मद। सब लोग को सिक्स चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव बॉडी चाहिए, वो सुंदर दिखे।
अच्छा, वो रूप मत में जाएगा ना, तो वो अच्छा, तो उनका ये बल मत में जाएगा जो बॉडी बिल्डर का,
बल मत में उसका जिसको अपनी ताकत का गर्व है, कोई आए मेरे से लड़ने और मैं उसको बताऊं, करेक्ट। अब अपनी बॉडी को लड़ने के लिए ही बना रहा है, और देट इज आर वेरी अनफॉर्चुनेट नो, मतलब
तो अभी तो वो जो होते हैं अभी क्या है कि सोल्जर्स होते हैं एयरफोर्स मिलिट्री तो वो या तो वो तो लड़ने के लिए तो वो तो अपना बल या रेसलिंग है,
रेसलिंग पर जाते हैं, करेक्ट। हाँ, तो अब उनका जो बॉडी का बनाना है वो किसके लिए है, किसके लिए
अपना
करेंगे, फाइट करेंगे, करेक्ट।
हाँ
करेक्ट करेक्ट। हाँ, सो नाउ बल मध में जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, मध में नहीं एक्चुअली बल में ही, जिनको बल मध का गुरु होता है, दे आर मोस्टली द फाइटर्स, करेक्ट?
दोबारा कीजिए, एकदम नहीं सम,
जिनको
बल
मोस्टली होता है, जिनको बलमद मोस्टली होता है, वो मोस्टली होते हैं फाइटर्स, राइट? जिनको रेसलिंग करनी हो, जिनको लड़ाई पर जाना हो, मिलिट्री वाले हो, बॉडी गार्ड हो, कमांडो हो, पुलिस वाले हो, राइट? एंड द यूजुअल वर्क इज टू फाइट, उनको लड़ाई ही करनी होती है, करेक्ट? नाउ व्हाट जेनिज्म सेज, जो हम अपने जो कुदेव होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, राइट? हथियार रखने वाले, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने वाले, तो इनके जो हमेशा परिणाम है ये अशुभ लिशा के परिणाम होते हैं। मतलब द मोमेंट यू आर वर्किंग योर ऑन योर स्ट्रेंथ, आप अपने स्टेमिना पर, अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी पावर पर काम कर रहे हो, इट द सेम मोमेंट जब आप ये पूरा अज्यूम करो कोई आएगा तो मैं उसको मार दूंगा, आई फाइट लाइक दिस, आई डू दिस, मैं ऐसे करूंगा, राइट? आप हमेशा उसको अपने ब्रेन में सिमुलेट कर रहे हो, आपने पंचिंग बैग के लिए आप पंचिंग बैग को पंच कर रहे हो सो दैट यू कैन सिमुलेट किया सामने भी कोई रहेगा तो हाउ विल आई हिट हिम, मैं उसको चेहरे पे कैसे मारूंगा, चेस्ट पे कैसे मारूंगा, पैर पे कैसे मारूंगा, राइट? तो कॉन्स्टेंटली ये परिणाम कहलाते हैं अशुभ लिशा के परिणाम है, दुष्ट नील, और इन परिणामों का फल होता है नरक गति।
वैसे ऐसे वो फाइटर्स होते हैं, उनकी कसाई कितनी, मैं तो हमेशा कभी देखती तो मुझे ऐसा लगता कि कितनी इनकी कसाई वो तीव्र लगती
है। रेसलिंग को तो जो देखते भी हैं उनकी भी तीव्र अशुभ कसाई है, जो लोग देखकर काले को जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, दे आर एक्चुअली पेइंग फॉर डेथ, दे आर एक्चुअली बाइंग टिकट्स फॉर नरक, क्योंकि वो रौद्र ध्यान है, दूसरे लड़े और हमको मजा आए, जिस टाइप की सोसाइटी में वी आर लिविंग, मतलब जानवरों को लड़ाकर या इंसानों को लड़ाकर किसको मजा आता है, मतलब सामने लिटरली वो बीट नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर दूसरा भी चढ़ गया है, मार रहा है, दे आर फाइटिंग बिकॉज दे आर पेइंग मनी टू देम, तो उनके लिए अच्छा जरिया है पैसे कमाने का, उनको जरूरत है पैसों की, आप इसको बंद कर दोगे शायद वो कुछ और करेंगे, कर करे वो शायद फाइट नहीं करेंगे, बिकॉज फाइट इज डाइंग, लेकिन हम लोग दे रहे हैं उसके पैसे, मतलब कितने तीव्र हिंसा मंदी रौद्र ध्यान है, इसी से नरक गति के बन कर पा रहे हैं सीधा, करेक्ट? बट इवन जिसको बल का मत है, ही ऑलवेज सिमुलेटिंग दैट फाइट इन हिज ब्रेन, कोई कुछ बोलते वो पूरी फाइट सिमुलेट कर देता है, अच्छा मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है, ही इज कॉन्स्टेंटली कंस्पायरिंग टू फाइट, किसने कुछ जिसको बोल दिया तो वो भाई हम आपने कुछ बोल दिया हम शब्दों से थोड़ी जवाब देंगे, आई शो यू माई पावर विद माई बॉडी, तो इट विल ऑलवेज सिमुलेट द फाइट, तो बल का मद सबसे पहले तो बल वो काम का है, यदि हम नीति शतक की बातें करें तो ताकत वही काम की है जो दीन जनों के उपकार में लगे, जो परोपकार में लगे, राइट? बल वही काम का है, शक्ति वही काम की है कि दूसरों के दुख को दूर करने के काम में लगे, जबकि हमारे पास बहुत सारे कथानक और हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जैसे कोई शेर परेशान करता है तो राजा अपनी प्रजा को बचाने के शेर से लड़ने चला जाता है, हाथी पागल हो गया सामने पर रखी चले गए तो हाथी को रोक गया, अरे ऐसे ही अजीतेंद्र कुमार में हाथी पागल हो गया तो उसको रोक गया, तो ताकत वे काम की जिस ताकत को हम परोपकार में लगा पाए, करे यही वाली बात हुई थी वेणुनाथ कुमार के समय पर, जब श्री कृष्ण को अपने बल का मत हो गया था और फिर वेणुनाथ जी चले गए थे और उनकी शैया पर लेटे नाग से शंख फूस का और एक अंगी पर चक्र घुमाया, एंड देन श्री कृष्ण को पता पड़ गया कि कितना बल है इनके पास, तो बल वही जो दूसरों के उपकार में लगे, इट इज गुड, ठीक है, इट्स गुड टू हैव स्टैमिना, इट्स गुड टू हैव स्ट्रेंथ, हमारे मरीजों के पास बहुत बल होता है, अभी वो ऐसी कड़कती ठंड में या भयंकर गर्मी में पहाड़ों पर नदियों पर चली जाती है और उसको सहन करते हैं, बहुत स्ट्रेंथ है उनके पास, करेक्ट? तो बहुत बलशाली है, लेकिन बल का मध जब हो जाता है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेता है लाइट साइट्स को सिमुलेट करना, और उसकी एटिट्री बन जाती है रौद्र ध्यान की, वो भी हिंसा रंगी, चिंता में आनंद, कोई मुझसे बोलकर देखे उसकी हिम्मत कैसे मुझसे बोलने की, चलिए हम उसको मजा चिखाते हैं करें। और ये बल का मत अब सिर्फ फिजिकल नहीं रह गया है, ये बल का मत विल एक्सटेंड नाउ जिसके पास गन है, जिसके पापा पुलिस में है, मे बी somebody who has good links with the politicians, जिसको लगता है कि मेरी एक बात पर मेरे प्रोटेक्शन के लिए इतने लोग खड़े हैं, जिसके पास बॉडी गार्ड चल रहे हैं, उसको क्या है बल का मत, दे शो देयर पावर। तो बल का मत अकेले शरीर से नहीं है, बल का मत आपके पास कितने इक्विपमेंट्स, कितने आर्मरी है, कितने लोग आपके पास प्रोटेक्शन के लिए है, ये सब बल के मत में जाएगा। बट वेन इट रीच इज द ब्रिम, ये तो भाई मुझे घमंड हो गया मेरी ताकत का, तो मैं ताकत का घमंड हमको और 5 पापों को उद्दंडता से करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है,
हेलो, हाँ हाँ
हाँ, देखिए हम अभी तक के जितने भी पढ़े हैं बस उनमें हमको एक ही बात समझ में आई, पिता भू कह रहे कि हमारा कुल या जाति हो या ज्ञान हो या रूप हो या हमारी ताकत हो, यदि हमारे अंदर में तत्व ज्ञान नहीं है, मतलब विनय ने हमको नहीं बताया कि तीर्थंकर कितने रूपवान कितने बलवान होते हैं, उनका परिवार कितना विशाल कितना महान होता है, यदि उनके ज्ञान जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी होते हैं, यदि हम तीर्थंकरों को या अन्य जीवों को अपने से बड़े जीवों को नहीं जानते हैं, तो मान के कारण ही हमको अपना परिवार बड़ा दिखता है, हमको अपना रूप अच्छा दिखता है, हमको अपना ज्ञान ज्यादा दिखता है, हमको अपना बल ज्यादा दिखता है। तीर्थंकर के पास इतना बल होता है कि वे 3 लोग को फुटबॉल की तरह उछाल के खेलते, ये सामर्थ्य संभावना सत्य है, ऐसा कभी कोई करेगा नहीं, बट यदि करे तो क्वांटिफाई उसको ऐसे किया जाता है दैट दे आर सो पावरफुल, बट उनको भी ऐसे परिणाम नहीं आते। ठीक है,
वो बल का अनुभव थी, वो बल का ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि जो तीर्थंकर बालक होता है तो वो उसका अभिषेक करने इंद्र ले जाते हैं, तो इंद्र के में वो तो वो अपना अंगूठा हिलाता है तो इंद्र को
तो उसमें वो अपना अंगूठा तो थोड़ा दबा देता है तो वो शौत्रविंद्र को समझ में आ जाता है, फिर वो छत्र को सीधा करते हैं, राइट। वो उनका बल तो अनंत है और यहाँ हमारा बल क्या है जिसको हमें छुपाना पड़ता है, जिसके लिए हमको रोज कसरत करनी पड़ती है, यदि हम 4 दिन जिम में नहीं जाएंगे तो फिर ढीली पड़ जाएगी बॉडी, रेगुलर मेंटेनेंस, देन आपको इतने सारे आर्मरीज लगेंगे, सारे के सारे आपके पास गन रहे, आपके पास कुछ और इक्विपमेंट्स रहे, तो ये बल है कि ये डरपोकपना है। हम बोलते हैं ना खुदे इतने सारे धनुष वगैरह लेकर रखे हैं, तो भगवान भयभीत है इसलिए शस्त्र रखे हैं, ऐसे आप इतने डरे हुए हो कि आपको अपनी बॉडी बनानी पड़ रही है, आपने इतने दुश्मन बना रखे हैं कि हर कोई आपको मारने के लिए पीछे पड़ा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आप और हम कॉमनली आराम से चले जाते हैं बाहर, राइट, एंड हमको कभी डर नहीं होता कोई आके भी somebody will come and fight with us, but those जिनके पास ये सारी ताकत वगैरह होती है उनको हमेशा डर के निकलना पड़ता है, they always carry a gun with them, जिनको थोड़ा भी लगता है जो थोड़ी फाइटिंग पर आगे बढ़ जाते हैं, कि जिनके पास जितनी ताकत होती है उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा सिमुलेट करने लगता है और वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं लड़ने के लिए। आप लोग कभी ऐसा सोच के बाहर नहीं निकलते कि अरे यहाँ पे लड़ेगा ये करेगा तो मैं क्या करूंगा, बट दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दिस मेंटली, ये समथिंग इज देयर कॉन्शियस इन देयर माइंड, दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, यस और नो, करेक्ट। सो उनका पूरा दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो ऑलवेज फुल ऑफ फियर कि कब क्या हो जाए, हमको कब लड़ना पड़े, कब क्या करना पड़े। इसके बारे में और चर्चा ये हो सकती है एक कि नरक गति वहां पर मरण नहीं होता, वहां ताकत बहुत होती है, लेकिन वो ताकत किस काम आती है, किसी काम नहीं, वहां जिसको पिटना है वो पिटते हैं, ठीक है, आपस में लड़ाई करते हैं, करे तो जिसका परिणाम लड़ने लड़ाने के हो जाती है कि देखो मेरे सामने कौन आएगा, मैं क्या करूंगा, उसको समझ में आने लगता है कि भाई इसको अब लड़ने के दिन आने वाले हैं. इज गोइंग टू बी अ फाइटर. फाइटर कौन होता है? कि नरक में एक क्षण को भी फाइट नहीं रुकती, कॉन्स्टेंट हमेशा लड़ाई होती है. तो जिसके यहाँ पर निरंतर लड़ने के परिणाम आ रहे हैं, लेकिन उसमें से हम एक लॉजिकल इंफेरेंस ही निकाल सकते हैं कि भाई ठीक है, अभी कहाँ जाना है इनको, लड़ना ही है. इनको या तो लड़ता हुआ देखने में खुशी हो रही है या खुद लड़ने में खुशी हो रही है. इन बोलते हुए दे हैव ओनली वन प्लेस टू गो, नरक है. कि बल का मत हमेशा अपनी कषायों को बढ़ा देता है, अशुभ रेशाओं में पहुंचा देता है, और बहुत ही रौद्र उत्कृष्ट रौद्र परिणामों में ये वाला मत रहता है. इसलिए ये वाला मत हमको ध्यान देना चाहिए. दूसरा, शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता. बड़े थे फाइटर्स होते हैं, एंड इन द एंड यदि उनके शरीर में पैरालिसिस हो जाए तो उनका कितना ही हैवी हाथ, कितनी हैवी पैर क्यों नहीं हो, लेकिन वो मूव इट. तो जब तक शरीर की स्थिति है तब तक आपको लग रहा है कि मैं इसको ऐसे मारूंगा, पैर ऐसे उठाऊंगा, ये ऐसे करूंगा. द मूवमेंट द बॉडी डिजेडर्स, यदि बॉडी ने अपना काम करना छोड़ दिया, देन फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता. लास्ट ईयर की दो तीन न्यूज यहाँ की है, लाइक यूथ इन देयर 20s 27, 28 के एज पर. तो फिट रहोगे. इट्स गुड कि हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बॉडी रिक्वायर्स है, जो कुछ भी है. But because of that exercise, we'll have a long life. Don't live under that lie. आपकी जितनी आयु है आप उतना जियोगे. तो आप एक्सरसाइज करो या नहीं करो, हाँ, जब तक हम रह रहे हैं तब तक हम एक्सरसाइज करनी चाहिए. हमको चलना चाहिए, फिरना चाहिए. बॉडी रिक्वायर्स एक्सरसाइज. दैट्स वो हमारा क्या बोलते हैं, दैट इज वो हमारा विवेक है कि हमको बॉडी को फिट रखना चाहिए. बट जब हम पागल होकर बॉडी के ही पीछे भाग जाए और हमें भूल जाए कि हम बॉडी की गर्दन रहता नहीं है भैया. बॉडी तब तक जब तक आयु है और उसके बाद बॉडी नहीं बचेगी, एक क्षण को भी नहीं रुकेगी. आयु होगी और यदि बॉडी का एक्सीडेंट हो जाए तो फिर जैसे तैसे जाएगी भी नहीं, और यदि नहीं है तो फिर आप इतना प्रयत्न करो, इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन फिट. ये शरीर में आत्मबुद्धि के मिथ्यात्व का प्रदर्शक है. जो आत्मा को जानते हैं वे शरीर के बल से अपने आप को बड़ा बलवान नहीं देखते. ठीक है, कोई क्वेश्चन?
नहीं है.
हाँ, अब जो अगला है दिन मत, हम इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बट आई एम गिविंग यू अ होमवर्क. सबके लिए एक होमवर्क है. आप नामकरण की 93 प्रक्रिया होती है. देखिए, गात्र अनात्य कर्म होते हैं, राइट? राइट, घात्य कर्म और घात्य कर्म. घात्य कर्म आत्मा के गुणों का घात करते हैं, उनके सारे उदय आत्मा में होते हैं, राइट? अघात्य कर्म आत्मा के गुणों का घात नहीं करते, राइट? अघात्य कर्म के उदय में हमको बाहर का पूरा संसार मिलता है, राइट? हमको शरीर मिलता है, हमको आयु मिलती है, गोत्र मिलता है, राइट? यस. तो आपको नामकर्म या सारे अघात्य कर्मों में से ऐसे कर्म को ढूंढ कर लाना है किस कर्म के उदय में हमको धन मिलता है. धन मतलब एवरीथिंग, अपने हाउस, अपने कार, आपके पास बहुत बड़ी आपकी फैक्ट्री का होना, आपके पास एक चार्टर्ड प्लेन का होना, यू नो, ये एवरीथिंग दैट यू ओन. आपके पास पूरा आपका एक किला है, फोर्ट है, राजघराना है. तो ऐसा कौन सा नामकर्म है जिसके उदय में हमको अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छा एनीथिंग, वॉट एवर, जो कुछ भी है, इवन अच्छे कपड़े, अच्छा चश्मा, अच्छा फोन, अच्छा लैपटॉप, और अच्छा एनीथिंग, अच्छी शूज, अच्छी सैंडल्स, आपकी अच्छी ज्वेलरी, राइट? एनीथिंग, एवरीथिंग. ऐसा कौन सा नामकर्म है जिसके उदय में ये सारी चीजें प्राप्त होती है? ठीक है, एवरीबडी गॉट द होमवर्क?
नाम कर्म
में आपको ढूंढ कर निकालना है. नाम कर्म या फिर अघात्य कर्म, जो कि सब पर द्रव्य है, ये अघात्य कर्म के उदय में मिलेंगे. तो ऐसे कौन सा अघात्य कर्म है जिसके हृदय में हमको ये सारे परद्रव्य के संयोग जिसको हम अपना मानते हैं कि मेरा कंप्यूटर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा कपड़े, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरे पापा, ये सारे के सारे परद्रव्य। क्योंकि बॉडी किससे मिलती है, डेट वी नो, बॉडी कब मिली थी हमको पता है, शरीर मिला था हमको, औदारिक शरीर मिला था, कार्मिक शरीर मिला था हमको, फिर सहमन मिला, इन सब के नामकरण तो हमको मिल जाते हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि अच्छा पापा, अच्छी फैमिली, अच्छी ज्वेलरी, ये देने वाला कौन सा नामकरण है, किसके वजह में मिलता है, ठीक है, नामकरण या फिर बाकी के अघातीय कर्म, उसमें वेदनीय कर्म भी है, वायु कर्म भी है और गोत्र कर्म भी है, ठीक है। आई आस्किंग वी स्टार्ट अवर डिस्कशन विद धन मत, और फिर हम देखेंगे कि हम क्या करें बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ओके okay,